ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
अचानक सुरेश के आने पर आश्चर्य प्रकट करता हुआ महीम बोला, स्वागत है भाई सुरेश, कहो कुशल से तो हो। महीम के वाक्य के पूरा होने से पहले सामने आखड़ा सुरेश अपने बैग को नीचे रखकर बोला, ये क्या, विवाह के बाद भी तुम अकेले कैसे खड़े हो? अचला भाभी कहाँ गायब हो गई? उनके यहां से तुम्हारा पता लेकर मैं यहां पहुंचा हूं। वास्तव में सुरेश ने चीखती अचला के अंतिम वाक्य को सुन लिया था। सुरेश बोला, सुशिक्षिता महिला से विवाह का स्वाद तुम्हें चखने को मिल ही गया होगा। थोड़े समय में ही भाभी ने यहां गवई गांव की संस्कृति में अपने को इस प्रकार से ढाल लिया होगा कि कोई चतुर व्यक्ति भी उन्हें शहर में आई महिला नहीं कह सकता होगा। अपने को लज्जित अनुभव करते हुए महीम ने कोई उत्तर नहीं दिया। भीतर कोठरी में खड़ी अचला की ओर उन्मुख होकर सुरेश बोला, कहीं मैं कोई गलत समय पर तो नहीं आ गया? मैं आप लोगों के रंग में भंग डालने का दोषी तो नहीं हूं? अगर ऐसा हो तो क्षमा करना। फिर महीम को संबोधित करते हुए उसने कहा, क्यों मित्र, क्या खड़े ही रहोगे? कहीं बैठने की व्यवस्था हो तो बताओ, वहां चलकर बैठा जाए। चलते चलते मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, ये भी कोई रहने की जगह है? चलो मेरे साथ कलकत्ता लौट चलो। महीम ने सुरेश को बैठक में लाकर बिठाया। सुरेश ने कहा, क्या भाभी ने पर्दा ओढ़ रखा है जो मेरे सामने नहीं आ रही है? महीम के मुंह खोलने से पहले ही बगल के दरवाजे से एकदम स्वस्थ बनी अचला मुस्कुराती और सुरेश का अभिवादन करती हुई बोली, अहो भाग्य जो आपके चरण इस घर में पड़े। अचला के खिले चेहरे से उसके मुख सौभाग्य की कल्पना करता हुआ सुरेश ईर्ष्या से जल भुन गया। नमस्कार का उत्तर देते हुए बोला, मुझे लगता है कि मुझे इस प्रकार अचानक नहीं आ टपकना चाहिए था, किंतु आप दोनों में यह कैसा तकरार चल रहा है? यह पहला अवसर था या फिर आपके आने के दिन से ही ऐसा चलता रहा है? पहले की तरह मुस्कुराती हुई अचला बोली, पहले आप ये बताइए कि आपको हमारे किस उत्तर से अधिक प्रसन्नता मिलेगी? शायद दूसरी बात से। चलिए अतिथि के मनोविनोद के लिए मैं यही कह देती हूं, गंभीर होकर सुरेश बोला, अतिथि का मन रखने के लिए झूठ बोलने को कौन उचित बताता है? गृहिणी का वास्तविक परिचय अतिथि का झाड़ू दिखाना है। हंसती हुई अचला बोली, गृहिणी गृह से बनती है, अपनी तो छोटी सी कुटिया है। ये जानते हुए भी आप चले आए, इस पर हमें आश्चर्य भी हो रहा है और प्रसन्नता भी हो रही है। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी आज की रात सुखपूर्वक कटे और आपको किसी प्रकार का कष्ट या असुविधा ना हो। पति की ओर देखती हुई अचला बोली, नैन बाबू से कहकर आज रात इनके ठहरने की व्यवस्था चंद्र बाबू के घर क्यों ना कर दी जाए? उनके पक्के मकान में इनकी रात सुखचैन से बीतेगी। शालीनता और शिष्टता के बहाने अपने ऊपर किए जा रहे प्रहार अपने को संयत रखना कठिन हो रहा था। सुरेश ने उसका उद्धार करते हुए कहा, भाभी जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप लोग किस चक्कर में पड़ गए हैं? मैं थका मांदा आया हूं, पहले मेरे लिए कुछ चाय पानी का जुगाड़ करो ताकि इस मुर्दा शरीर में कुछ जान आए। रात गुजारने की चिंता बाद में कर ली जाएगी। यदि इस मकान से तुम लोगों को सचमुच की विरक्ति हो तो मेरा कुछ कहना नहीं बनता। महीम की ओर से हंसकर उत्तर देती हुई अचला बोली, यहां प्रश्न अनुरक्ति या फिर विरक्ति का नहीं, सच तो यह है कि अपने पूर्वजों की संपत्ति से किसी का मोह ना होना संभव नहीं। इसके सामने तो लाट साहब का महल भी तुच्छ है। चलो छोड़ो इस बहस को, पहले आपकी बात ही रख लेते हैं। आपकी पेट पूजा की चिंता करते हैं, बाद में दूसरी बातें होती रहेंगी। चाय का पानी चढ़ा दिया गया है, 5 मिनट में सब हाजिर कर दिया जाएगा, तब तक आप चुप रहकर थोड़ा सुस्ता लीजिए। कहकर मुस्कुराती हुई अचला कमरे से बाहर चल दी। अचला के चले जाने से सुरेश के भीतर की ईर्ष्या और अधिक धधकने लगी। वो स्वभाव से दुर्बल चरित्र और अस्थिर बुद्धि का युवक था और अपने इन दुर्गुणों के लिए वो मित्र परिचितों में अपने को किसी प्रकार तुच्छ अपमानित और लज्जित अनुभव नहीं करता था। उसके बचपन के मित्र जब महीम के साथ उसकी तुलना करते हुए उसे लहरी, अस्थिरचित और स्वप्नजीवी आदि विशेषणों से विभूषित करते तो वो किसी प्रकार से बुरा ना मानकर उल्टे प्रसन्न होता और कहता, मैं भले ही दृढ़ संकल्प का व्यक्ति नहीं, भले ही मेरे विचारों में स्थिरता नहीं, किंतु इतना तय है कि मैं बुरी प्रवृत्ति का नहीं। मुझसे कभी किसी के अनिष्ट किए जाने की कोई संभावना नहीं। मुझसे कभी किसी को हानि नहीं पहुंच सकती। दूसरों के लिए धन खर्च करने में भी मुझे कभी आपत्ति नहीं रही। यहां तक कि कोई भी सहायता करते समय मैं पात्र अपात्र का विचार नहीं करता। दूसरों का दुख देखकर मेरा दिल रो उठता है और मैं अपने मुंह का निवाला भी भूखे को खिलाने में सोच विचार नहीं करता। और यह सब मैं किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर कदापि नहीं करता। मैं किसी से द्वेष नहीं करता, इसलिए समझता हूं कि संसार में मेरा कोई मित्र भले ना हो, किंतु शत्रु कोई नहीं है। बिना किसी कारण के शत्रुता की मैं चिंता नहीं करता। दिल के मामले में सुरेश अवश्य ही अत्यंत दुर्बल था। इस सत्य को वो भली प्रकार से जानता ही नहीं था, बल्कि मानता भी था। उसी सुरेश ने अचला के संबंध में अंतिम क्षणों में जिस संयम और संतुलन का प्रदर्शन किया था, उससे उसका अपने को सराहना और आत्मविश्वास संपन्न मानना स्वाभाविक था। इसके लिए वो अपनी पीठ को थपथपाता हुआ हमेशा कहता, अब मैं समय आने पर अपने ऊपर संयम रख सकता हूं, अपने संकल्प पर दृढ़ता से डटा रह सकता हूं, जरूरत पड़ने पर मन की दुर्वासना को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता हूं, मित्र के लिए अपने प्रेम की बलि चढ़ाने जैसा अपूर्व त्याग कर सकता हूं। मेरे इस आदर्श त्याग के सजीव और प्रत्यक्ष प्रमाण है महिम और अचला। वास्तव में झूठ से लंबे समय तक अपने को बहकाना और ब्रह्म जाल में उलझाए रखना संभव नहीं होता। सुरेश जिसे त्याग कह रहा था, वो वास्तव में परिस्थितियों से उत्पन्न उसकी विवशता थी। यही कारण था कि एक सप्ताह के भीतर ही उसके संयम की फूक निकल गई। उसके लिए अधिक समय तक अपने को धोखे में रखना संभव ना हो सका। वो सोचने लगा कि अचला को छोड़ने की मूर्खता का उसे क्या फल मिला। जब मुझे इसका कोई लाभ ही नहीं मिलना था, तो मैंने भावुकतावश ये गलती क्यों की? हाथ में आई दुर्लभ वस्तु को हाथ से क्यों निकल जाने दिया और बेचारी बुआ को क्यों तरसाया? उसके इस कथन में कितनी निराशा और उत्सुकता भरी थी। बेटा, अब तू भी ऐसी बहू ले आ, ताकि मैं तेरा बसा हुआ घर देखकर मरूं। मेरी ये त्यागवृत्ति मेरे लिए आत्मवंचना और आत्मयातना जैसी ही सिद्ध हुई है। एक दिन सुरेश से भेंट होने पर केदार बाबू ने अचला के विवाह के विषय में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। वे अपनी पुत्री का हाथ महीम के हाथ में सौंपने के पक्ष में कभी नहीं थे। यदि सुरेश पीछे ना हट जाता तो उन्हें अपनी पुत्री को कुएं में ना धकेलना पड़ता। केदार बाबू के दिल की बात जानकर सुरेश तड़प उठा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसे दुख देने वाले को जीवन में कभी सुख ना मिले और अचला को भी अपनी गलती के लिए पश्चाताप की ज्वाला में धधकना पड़े। अचानक सुरेश का विवेक जागृत हुआ और वो अपने मित्र के प्रति दुर्भावना रखने के लिए अपने को कोसने लगा, किंतु उसकी दमित वासना, अपूर्ण इच्छा और अतृप्त इंद्रियां फिर विद्रोह करने लगी। उसके लिए अपने पीड़ित और वंचित दिल को समझाना और वश में रखना संभव ना रहा। वो अपने ईर्ष्या भाव को सही और न्याय संगत मानने लगा। किसी तरह दिन बीतते गए, किंतु उसका मन शांत नहीं हो सका और आखिरकार अपनी वासना को दबाने में असमर्थ वो एक महीना बीतने से पहले ही अचला से मिलने के लिए अपना सामान उठाकर महीम के गांव की ओर चल दिया। महीम की ओर ताकता हुआ सुरेश बोला, क्यों, मानते हो ना कि मुझमें दूर की सोचने की शक्ति है, इसलिए मेरा कथन सत्य सिद्ध हुआ है। कौन सा कथन? पांडित्य का आवरण ओढ़ता हुआ सुरेश बोला, भले ही गांव से मेरा कभी संबंध नहीं रहा हो, फिर भी मैं गांव वालों की मानसिकता को भली प्रकार से समझता हूं। मैंने तुम्हें कहना उचित नहीं समझा, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि गांव वालों की ओर से इस विवाह का प्रचंड विरोध होगा। मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। क्या तुम्हारे घर पर किसी ने खाना पीना स्वीकार किया? नहीं ना। क्या इसे तुम अपना बहिष्कार और तिरस्कार नहीं समझते? जब मैंने किसी को खाने पर बुलाया ही नहीं, तो फिर बहिष्कार का प्रश्न ही कहां उठता है? तुमने मुझे भी बहु भात का न्योता नहीं दिया, वह भी नहीं हुआ। क्या वह भी नहीं हुआ? आश्चर्य प्रकट करता हुआ सुरेश बोला, ठीक है, पर सोचो अपने जाति बंधुओं के प्रकोप से अपने को कब तक इस प्रकार बचाते फिरोगे? सुख दुख, हारी बीमारी, बाल बच्चों के कामकाज आदि में समाज से टूटकर नहीं रहा जाता। आखिर घर गृहस्थी का मामला ठहरा, मेरी तो यही। इतने में चाय का सामान हाथ में लिए यदु कमरे में आ पहुंचा और उसके पीछे खाने का सामान हाथ में थामे अचला आ गई। सुरेश के कथन का कुछ अंश अचला ने सुन लिया था, सुरेश इससे अनजान था। चाय पान के निबट जाने पर कंधे पर दुपट्टा रखकर महीम खड़ा हो गया और बोला, मुझे गांव के मुसलमान जमींदार के लड़के को अंग्रेजी पढ़ाने जाना है। वास्तव में इन जमींदार के साथ महीम के मधुर संबंधों के कारण ही गांव वालों को संगठित होकर महीम का विरोध करने का साहस नहीं हुआ था। अचला ने कहा, आज आप पढ़ाने न जाते तो अच्छा होता। महीम ने पूछा, क्यों? मानसिक रूप से सबल और शुद्ध अंतःकरण लिए रहने पर भी अचला का सुरेश के पिछले इतिहास के परिपेक्ष्य में उसके अचानक वहां आ धमकने पर आशंकित हो उठना स्वाभाविक था। अचला ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं थी कि सुरेश के मन में उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा और उसे अपनी निराशा और असफलता को सहज भाव से लिया है। इसलिए सुरेश द्वारा किसी उपद्रव के किए जाने की आशंका से वो भयभीत थी और घर में अकेली रहने को खतरा समझती थी। अपने मन की व्याकुलता को बाहर प्रकट ना करने की इच्छा से मुस्कुराती हुई अचला बोली, अतिथि रूप में घर आए मित्र को अकेला छोड़कर आपका कहीं बाहर जाना मुझे उचित नहीं लगता। तुम्हारे घर पर रहते अतिथि को किसी असुविधा के ना होने का मुझे पूरा विश्वास है। परेशान होती हुई अचला बोली, मेरा इनके साथ रहना नहीं हो सकेगा। उड़िया महाराज की पाक कला में निपुणता से आप परिचित हैं। यदि रसोई का जिम्मा उस पर डाल दिया गया तो खाते समय नाक भों सिकोड़ते रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूं, आज आप असहमति जतलाते हुए यह संभव नहीं, कहते हुए महीम ने कोने में रखी छड़ी उठाकर बाहर की राह ली। आश्वासन देता हुआ वो बोला, 2 घंटों की बात है, शीघ्र लौटता हूं। अचला जानती थी कि महीम के निश्चय को बदलना सरल नहीं, इसके अलावा अधिक बल देने से उसे उसके मन में छिपे भय के प्रकट होने की आशंका थी। ये सोचकर उसने चुप रहना ठीक समझा। महीम के घर से निकलते ही सुरेश अचला को सुनाता हुआ बोला, क्यों खामखा अपने को अपमानित कर रही हो? क्या तुम्हें अभी तक यह मालूम नहीं हुआ कि महीम ने किसी की नहीं सुननी है? तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपना काम निपटाओ, मुझे एक पुस्तक पकड़ा दो, उसी से मेरा समय मजे से कट जाएगा। सुरेश का कथन खटकने वाला होने पर भी सच था। महीम ने आज तक अचला की कभी एक नहीं मानी थी। महीम की ये दृढ़ता भले ही उसके चरित्र की एक प्रशंसनीय विशेषता हो, किंतु सुरेश के कहने के ढंग से अचला को यह सब अपमानजनक लगा। फिर भी उसने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। यदु के हाथ सुरेश के पास एक पुस्तक भिजवाकर रसोई तैयार करने के लिए वो रसोई घर में चली गई। रात को सोते समय महीम ने अचला से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि सुरेश के यहां कितने दिन रुकने का विचार है? अनेक कारणों से पूरे दिन अपने पति से उचाट हुई अचला ने इस प्रश्न को अपने ऊपर एक प्रकार का ओछा आरोप मानकर पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? महीम ने सहज भाव से पूछा था, उसके मन में ना कोई संदेह था और ना ही व्यंग्य करना या फिर आरोप लगाना उसका उद्देश्य था। वास्तव में मित्र से ये पूछने में उसे थोड़ा संकोच हो रहा था और खुद सुरेश ने भी कोई संकेत नहीं दिया था। वो सोचता था कि उसने अचला को इस विषय में कुछ अवश्य बतलाया होगा। महीम को चुप देखकर अचला बोली, इसका अर्थ है कि तुम समझते हो कि तुम्हें पूछने की आवश्यकता नहीं। सुरेश किसी उद्देश्य विशेष को लेकर यहां आया है, इस उद्देश्य की पूर्ति में कितना समय लगेगा यह तुम मुझसे क्यों जानना चाहते हो? कुछ देर तक चुप बैठा महीम स्नेहपूर्ण वाणी में बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। मुझे लगता है कि मृणाल के व्यवहार से तुम उखड़ी हुई हो, इसलिए किसी की बात को सही परिपेक्ष्य में देखना तुम्हारे लिए संभव नहीं हो पा रहा। अब तुम सो जाओ, कल सुबह इस विषय पर बातचीत करेंगे। कहता हुआ वो बिस्तर पर लेटकर और करवटे लेता हुआ सोने का प्रयास करने लगा। अचला भी लेट तो गई किंतु सो ना सकी। उसके मन में दिन भर इकट्ठा होता गया विकार भड़ास बनकर निकल जाता तो उसका जी हल्का हो जाता, किंतु दिन भर किसी कलह विवाद के ना होने से उसे शांत होने का अवसर ही नहीं मिला था। अब मन की मन में ही रह जाने से वो और अधिक व्याकुल हो उठी। बंद हुई पुस्तकों के पन्नों को खोलना उसे अशिष्टता और नीचता जैसा लगता था। इसीलिए वो ख्यालों में ही पति से वाद विवाद और उत्तर प्रत्युत्तर करने में व्यस्त रहते हुए बिस्तर पर पड़ी करवटें बदलती रही। अंधेरे में आग खुल जाने से उठ खड़ी हुई अचला ने बाहर आकर चाय की केतली हाथ में लेकर रसोई की ओर जाते यदु को देखकर उससे पूछा, बाबू कुछ कह गए हैं? यदु बोला, एक पहर दिन चढ़ने पर लौटने की कह रहे थे। तड़के उठकर खेत खलिहान देखने जाना और एक पहर दिन चढ़े घर लौटना महीम का प्रतिदिन का नियम था। अचला ने पूछा, क्या नए बाबू उठ गए हैं? यदु बोला, हां उन्होंने चाय बनाने को कहा है। अचला ने झटपट मुंह हाथ धोने और कपड़े बदलने के बाद बाहर आकर देखा कि सुरेश खिड़की दरवाजे खोलकर कुर्सी पर बैठा कल वाली पुस्तक पढ़ने में व्यस्त है। अचला की पदचाप सुनकर सुरेश ने उसकी ओर देखा तो उसे स्पष्ट हो गया कि अचला रात भर सो नहीं सकी है। उसकी आंखों के नीचे कालापन है, गाल पीले पड़े हैं और होठों पर रुखाई है। ये सारे लक्षण रात्रि जागरण के साक्षी हैं। वो जितना अधिक अचला के चेहरे पर देखता उतना ही अधिक उस पर आसक्त हो उठने के कारण उसके लिए वहां से अपनी दृष्टि हटाना असंभव हो रहा था। सुरेश के घूरने को अर्थ को ना समझती हुई और अपने को सामान्य बनाने की चेष्टा करती हुई अचला बोली, मुझे आज जागने में थोड़ी देर हो गई, तुम कब सोकर उठे हो? हां ये तो है। इसी बीच सामने दीवार पर टंगे दर्पण में प्रतिबिंबित सुरेश की दृष्टि को देखते हुए अचला उसके भीतर की वासना को ताड़ गई। साथ ही रात्रि जागरण के कारण अपने चेहरे के कुमलाए होने से वो अपने को अपमानित अनुभव करने लगी। सुरेश की दृष्टि से अपने को बचाने और अपने शोभाहीन चेहरे को छिपाने का और कोई उपाय ना देखकर वो चुपचाप उठकर बाहर चल दी। बिना कुछ बोले लंबे लंबे सांस लेता हुआ सुरेश जड़ बना बैठा रहा। 10 मिनट में चाय के सामान के साथ अचला के कमरे में आते ही सुरेश ने अपने को संभाल लिया और वो अचला से बोला, तुम चाय नहीं लोगी? मैं अब पीती ही नहीं। क्यों? अच्छी नहीं लगती। फिर इस गर्म इलाके में गर्म चाय पीने से नींद नहीं आती। कल रात भर ठीक से सो नहीं सकी। फिर हंसती हुई बोली, एक रात में ही सुख से ना सो पाने पर चेहरा ऐसा भद्दा हो जाता है कि किसी के सामने जाना अच्छा नहीं लगता। कुछ देर तक चुप रहने के बाद सुरेश बोला, तुम तो बचपन से चाय पीने की आदी हो, क्या महीम आग्रह नहीं करता? हंसती हुई अचला बोली, उनके आग्रह की किसे चिंता है? फिर ये कोई अमृत तो नहीं जिसके बिना जिया ना जा सके? सुरेश को अचला की हंसी के पीछे छिपे दुख दर्द को समझते देर ना लगी, इसीलिए वो उत्साहित होकर बोला, अचला तुम जानती हो कि मैं मुंह फट स्पष्ट सीधी बात करने का अभ्यस्त आदमी हूं। मैं किसी प्रकार की भूमिका बांधने या फिर यहां वहां की हाकने में विश्वास नहीं करता। इसलिए तुमसे सीधे सीधे एक दो बातें पूछना चाहता हूं। यदि तुम्हें बुरा न लगे और उत्तर देना चाहो तो पूछूं। हंसती हुई अचला बोली, इसमें क्रोध करने की भला क्या बात है, आप प्रसन्नता से पूछिए। सुरेश बोला, ठीक है, अच्छा सही बताना, क्या तुम यहां सुखी हो? क्रोध से लाल चेहरा लिए अचला बोली, ऐसा प्रश्न पूछना आपको शोभा नहीं देता। क्यों, ये प्रश्न पूछने में क्या खराबी है? आपके मन में यह प्रश्न पूछने का विचार कैसे उत्पन्न हुआ कि मैं सुख से नहीं हूं? फीकी हंसी हंसता हुआ सुरेश बोला, मन क्या सदैव उचित अनुचित की ओर ध्यान देता है? 2 महीने पहले मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं था, उल्टे तुम्हें सुखी रखना मेरा दायित्व था। आज मुझसे अधिकार के छिन जाने का कोई अफसोस या शिकवा नहीं, किंतु फिर भी आज सत्य जानने को उत्सुक हूं। कभी लगता है कि जो हुआ ठीक हुआ है और कभी बिल्कुल उल्टा लगता है। मेरे मन की व्याकुलता से तुम परिचित हो, सच बता दोगी तो मुझे तसल्ली मिलेगी। सुनकर अचला का जी भर आया, आंसू छलकने को आए, किंतु उसने पूरी शक्ति लगाकर अपने दिल को थामा और अपने को संभाल कर बोली, मैं आनंद प्रसन्न हूं। सुरेश ने कहा, सुनकर अच्छा लगा। कुछ देर तक दोनों ओर से कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में चौंकता हुआ सुरेश बोला, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे लिए मैंने कितना सहा है, क्या तुम्हें कभी? अपने कानों में उंगली देती हुई अचला बोली, मुझे इस विषय में कुछ कहने के लिए विवश मत कीजिए। अचला के निकल भागने के प्रयास को विफल करने के लिए खुले किवाड़ों के बीच में आ खड़े हुए सुरेश ने कहा, तुम्हें इसका उत्तर देना होगा। सुरेश की दृष्टि में छाई वासना को देखकर घबराई और डरी हुई अचला पीछे हटकर बोली, हां तुम मुझे क्या बताना होगा? सुरेश आश्वासन देकर बोला, अचला मैं अपने पूरे होश आवास में हूं और विश्वास करो कि मैं तुम्हारे शरीर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, इसलिए डरो मत, आराम से खड़ी रहो और मेरी बात सुनो। अब तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा, किंतु मुझ पर तुम्हें अब भी पूरा अधिकार है। मैंने तुम्हें उस अधिकार से कभी बेदखल नहीं किया। अचला बोली, मुझे आप पर अपना अधिकार बनाए रखने की क्या आवश्यकता है? अचला ने देखा कि उसके इस कथन से सुरेश का चेहरा मलिन, उदास और फीका पड़ गया है। इसके साथ ही उसने यह भी अनुभव किया कि सुरेश का दुख साधारण कदापि नहीं था। कुछ देर तक चुप रहने के बाद कोमल स्वर में बोली, सुरेश बाबू, किसी पुरुष के लिए किसी पराई स्त्री से ऐसी बातें करना मर्यादा के विरुद्ध है, फिर इस सब का क्या लाभ है? क्यों बेकार में अपने को और मुझे परेशान करते हो? सुरेश बोला, क्या तुम्हें मेरी बातों से सचमुच दुख पहुंचता है? अचानक अचला के मुंह से निकला, तो क्या आपने मुझे पत्थर समझ रखा है? सुरेश अचला के मुंह पर दृष्टि गड़ाए रहा। अचला ने सिर झुका दिया। सुरेश बोला, अचला मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। इस पूंजी के सहारे मैं अपना जीवन सुख से काट लूंगा। जब तुम पत्थर नहीं हो तो मुझे एक भिक्षा देने की कृपा अवश्य करना। मैंने तुम्हारे लिए बड़े दुख सहे हैं, इसलिए तुम सुख के समय जहां जी चाहे जिसके साथ रहो, किंतु भगवान न करे यदि तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख आए तो उस समय अपना भार संभालने का अवसर मुझे देना। मत भूलना कि मेरा द्वार तुम्हारे लिए सदा खुला रहेगा। कहते हुए सुरेश का गला भर गया और उसके गालों पर आंसू लुढ़कने लगे। उसकी सहानुभूति में अचला की आंखें भी गीली हो आई। उसी समय अपने पैरों की आहट से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए महीम ने पूछा, क्यों सुरेश, चाय नाश्ता हो गया? सुरेश के लिए उत्तर देना सहज ना हुआ। वो अपना सिर झुकाकर अपनी धोती के आंचल से चोरी चोरी अपने आंसू पोंछने लगा और संवेदना में अपनी आंखों से निकले आंसुओं को अपने आंचल में छिपाती अचला चुपके से बाहर निकल गई। बेचारा महीम एक कदम घर के भीतर और एक कदम घर के दरवाजे के बाहर रखे हक्का बक्का बना खड़ा रहा। अपने को संभाल कर महीम कुर्सी पर बैठ गया। तब अपनी आंखें पोंछ कर अपने को सहज बनाने की कोशिश करता हुआ सुरेश बोला, वास्तव में मैं आवश्यकता से कुछ अधिक ही भावुक होने लगा हूं, मुझे अपनी इस दुर्बलता पर काबू पाना चाहिए। महीम ने सुरेश के कथन को गंभीरता से ना लेते हुए उससे इसका कारण तक नहीं पूछा। आप ही अपना स्पष्टीकरण देता हुआ सुरेश बोला, इसका प्रमाण तो पूछो, मैं नहीं जानता, किंतु किसी के आंखों से आंसू देखकर मेरे लिए कोशिश करने पर भी अपने आंसुओं को रोक सकना संभव नहीं हो पाता। अब देखो ना, भगवान ने मुझे समय पर भेज दिया, अन्यथा केदार बाबू का बचना कठिन था। वहां उस बुड्ढे की कठोरता और निर्ममता को तो देखो, उसने अपनी इकलौती लड़की तक को घटना से अवगत कराने की चिंता नहीं की। विवाह के दिन से रूठे हैं तो सामान्य होने का नाम ही नहीं लेते। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि अब भूल भी जाओ, हुए को ना हुआ तो नहीं किया जा सकता। महीम ने पूछा, चाय पी चुके हो? हां चाय पी ली है। हां तो पिता के इस व्यवहार पर लड़की की आंखों में आंसुओं का आ जाना तो स्वाभाविक है। पिता की ऐसी कठोरता पुत्री के लिए असहनीय हो जाती है। फिर स्त्रियां स्वभाव से कोमल होती हैं, ये तो तुम जानते ही हो। इसीलिए पुत्री के मन की स्थिति का तो फिर कहना ही क्या। महिम बोला, हाँ ये सही है। अच्छा ये बताओ, रात को तुम्हें ठीक से नींद आई है ना? कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नए स्थान पर? सुरेश बीच में ही बोल पड़ा, नए स्थानों में जाने की मेरी आदत है। अच्छा महिम, केदार बाबू द्वारा अपनी बीमारी की सूचना ना देना क्या तुम्हें अपमान नहीं लगता? आश्चर्य की बात है, कहकर महिम हंस दिया और फिर बोला, घूमने के लिए चलने का मन हो तो मुंह हाथ धोकर जल्दी से तैयार हो जाओ। एक घंटे के बाद मुझे फिर बाहर जाकर सुबह के अधूरे पड़े काम को निपटाना है। पुस्तक पर दृष्टि गड़ाकर सुरेश बोला, कहानी काफी रोचक लग रही है, तुम इसी में मन लगाओ, मैं 2 घंटे में लौटता हूं। कहता हुआ महिम उठकर चलता बना। महिम के जाते ही सुरेश ने सिर ऊपर उठाया तो उसे ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसके मुंह पर कालिक पोत दी हो। जाते हुए महिम की पीठ को देखता हुआ सुरेश काठ का उल्लू बना बैठा रहा, किंतु बिना पूछे अपने और अचला के आंसुओं के दिए गए स्पष्टीकरण के किसी परिणाम के ना निकलने से वो अपने आप को अपमानित और लज्जित अनुभव करने लगा। दरवाजे की ओट में खड़ी अचला ने दोनों मित्रों की बातचीत सुन ली थी और वो कपड़े बदलने के लिए कमरे में गए महिम के पीछे चली गई थी। महिम के अपनी ओर देखने पर अचला ने अत्यंत मधुर कोमल कंठ में कहा, क्या मेरे पिता के किसी अपराध के कारण आप उनसे काफी गुस्सा है? अचानक किए गए इस प्रश्न के रहस्य को ना समझ पाने के कारण महिम स्थिर दृष्टि से अचला के मुख को देखने लगा। अचला फिर बोली, आपने शायद मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। महिम ने कहा, मैं तुम्हारे कथन के मंतव्य को समझ नहीं पा रहा हूं। अपने क्रोध को यथासंभव दबाती हुई अचला बोली, वास्तव में आप सब समझते हैं किंतु स्वीकार करना नहीं चाहते। सुरेश बाबू की स्पष्ट शब्दों में कही गई बात आपको मुझसे कहने में कौन सी बाधा अड़े आती है? मैं पूछती हूं कि मेरे पिताजी ने आपका ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आपकी दृष्टि में वे इतने नीचे गिर गए हैं कि उनकी ऐसी भयंकर बीमारी में भी आपको उनकी खोज खबर लेना गवारा नहीं? महिम बोला, मुझे ऐसी कोई खास जरूरत महसूस नहीं होती, फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। पहले मुझे ये बताइए कि क्या जरूरी नहीं? कुछ देर तक पत्नी के मुख पर देखता हुआ महिम बोला, सुरेश को यह सब मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। इसे सुनकर तुम्हें मुझ पर इतना अधिक बिगड़ने और नाराज होने की जरूरत नहीं थी। चलो छोड़ो, कीचड़ को पानी समझकर उससे मुंह हाथ नहीं धोया जा सकता। कहता हुआ महिम बाहर जाना ही चाहता था कि तेजी से आगे बढ़ी अचला उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। कुछ देर तक वो दांतों से होठों को दबाए इस प्रकार खड़ी रही मानो वो अचानक हुए आघात से उत्पन्न अपने भीतर की गहन पीड़ा को संभाल न पाने से जड़ बन गई हो। फिर साहस कर बोली, क्या आपके पास मेरी बात सुनने के लिए थोड़ा सा समय है? कहिए, रुका हूं, पानी सूख जाने पर ही कीचड़ का पता चलता है। इस सत्य से तो आपको कोई इनकार नहीं? तुम सही कहती हो, मैं बेकार में पानी बिलोड़ने के पक्ष में नहीं, किंतु क्या नीचे कीचड़ होने की आशंका से सफाई का काम रोक देना उचित होता है? एक ना एक दिन जब पानी का सूखना और कीचड़ का दिखाई देना तय है तो सच्चाई से आंख चुराने का क्या लाभ है? चलो, ये सब स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु अभी मुझे इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य को निपटाना है, महिम ने कहा। कठोर वाणी में अचला बोली, ठीक है, तुम पहले अपना अधिक आवश्यक काम निपटा लो, तब तक मैं प्रतीक्षा करती हूं। कहती हुई वो हटकर एक और खड़ी हो गई। कमरे से बाहर निकलकर जाते हुए महिम के दिखाई देने तक अचला उसे देखती हुई वहीं खड़ी रही और फिर किवाड़ बंद करके चल दी। 1 घंटे बाद स्नान के लिए कहने को आई अचला के चेहरे पर चिंता, उदासी और परेशानी को देखकर सुरेश के लिए ये अनुमान लगाना कठिन न हुआ कि पति पत्नी में जरूर किसी बात पर तकरार हुई है, किंतु अपने अनुमान की पुष्टि के लिए कुछ पूछना उसे उचित न लगा। चुपचाप खड़ी अचला ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? कल के मैले कपड़ों को सूटकेस में रखता हुआ सुरेश बोला, 1 बजे आने वाली गाड़ी के लिए तैयार हो रहा हूं। आश्चर्य प्रकट करती हुई अचला बोली, क्या आपने आज ही चले जाना है? अपने काम में लगा सुरेश बोला, जी हां। अचला ने पूछा, क्यों, क्या यहां से इतनी जल्दी जी भर गया है? सिर झुकाए और सामान समेटते हुए सुरेश ने कहा, तुम लोगों से मिलना था सो मिल लिया, अब अधिक दिन रुककर क्या करना है। कुछ देर तक स्थिर खड़ी अचला बोली, सामान समेटना छोड़िए, आपसे ये नहीं होगा, ये काम हम स्त्रियों का है, मुझे करने दीजिए, मैं सब कुछ ठीक ढंग से कर दूंगी। कहती हुई आगे बढ़ती हुई अचला को रोकता हुआ सुरेश बोला, रहने दीजिए, इसमें सजाने जैसा है ही क्या। किंतु सुरेश के कथन पर ध्यान ना देती हुई अचला ने झटपट उससे सूटकेस खींच लिया और उसे उलट दिया, फिर सारा सामान करीने से समेट कर रखने लगी। पास खड़ा सुरेश बार बार यही कहता रहा, आप क्यों नाहक परेशान हो रही है, ये सब मैं अपने आप कर लेता। कुछ देर तक सुनती हुई अचला मुस्कुराकर बोली, यदि आपकी बहन या किसी अन्य संबंध वाली स्त्री होती तो क्या वो ये काम आपको करने देती? वास्तव में आपको अपने मित्र द्वारा देख लिए जाने का भय सता रहा है, यदि वे आकर देख भी लेंगे तो मैं कौन सा पाप कर रही हूं, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला काम ही कर रही हूं। चुपचाप खड़े सुरेश को लगा कि महीम से हुई उसकी बातचीत की अचला को अभी तक कोई जानकारी नहीं, वो भी इस प्रसंग को फिर उठाकर अचला को व्यथित नहीं करना चाहता था। इसके अलावा वो महीम के आ जाने और सुन लेने की आशंका से भी बचना चाहता था। बक्से में ठीक ढंग से सामान भर देने के बाद अचला ने सुरेश से कहा, आप मेरे पिताजी की बीमारी की बात इनसे कहकर इन्हें नंगा ना करते तो अच्छा होता, आप जानते थे कि इन्होंने इस पर ध्यान नहीं देना है, क्या तुम्हें महीम ने यह सब बताया है? चौंक कर सुरेश ने पूछा। बगल के दरवाजे में खड़ी होकर मैंने तुम्हारे मुंह से सुना है, अपने को लज्जित अनुभव करता हुआ सुरेश बोला, इस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हंसती हुई अचला बोली, किसी बात की जानकारी देना भी अपराध है क्या? दुखी स्वर में सुरेश बोला, परिणाम सामने है, तुम दोनों को बेकार में दुख पहुंचाने का अपराध मैंने किया है, इसके लिए मैं तुमसे विशेष रूप से क्षमा याचना करता हूं। अचला ने अपना सिर ऊपर उठाया तो सुरेश को उसके भीतर की सारी व्यथा उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देने लगी। वो तेजित होकर बोली, आपने मेरे लिए ही ये सब किया है और मेरे कारण ही आपको लज्जित होना पड़ रहा है, फिर भी आप माफी मांगने की बात कहकर मुझे भावना शून्य जड़ स्त्री सिद्ध कर रहे हैं, आपको ना लज्जित होने की आवश्यकता है और ना ही क्षमा याचना करने की, उल्टे आपके उपकार के लिए मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सुरेश के चेहरे की हैरानी और परेशानी से अचला ने अनुमान लगाया कि सुरेश उसके कथन को ठीक से समझ नहीं सका है। पल भर के लिए चुप हुई अचला फिर बोली, आज आप यहां से नहीं जाएंगे, आपको मेरे कारण लज्जित होना पड़ा है, अन्यथा आपको ये सब कहने ना कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, जब आपने मेरे लिए दुख उठाया है तो मेरा भी आपके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है, ये घर केवल आपके मित्र का ही नहीं है, मेरा भी इस पर कुछ अधिकार बनता है, अब तक आप अपने मित्र के अतिथि थे, अब कुछ दिन आप मेरे अतिथि बनकर रुकिए, मैं आपको निमंत्रित करती हूं। अचला के साहस को देखकर सुरेश हैरान रह गया। दुविधा के कारण कुछ उत्तर दे सकने में असमर्थ सुरेश ने देखा कि अपना काम निपटाकर लौटा महीम उसके सामने खड़ा है, अचला को पीट किए बैठा और अनजाने उसके मुख से कुछ निकल जाने के कारण घबराए हुए सुरेश ने ऊंची आवाज में कहा, हां महीम, काम निपटा आए? हां। कहने के उपरांत अचला के चेहरे को देखकर महीम ने पूछा, ये क्या हो रहा है? महीम की उपेक्षा करती हुई और उसे जलाने की इच्छा से सुरेश की ओर देखती हुई अचला बोली, आप मेरे भी मित्र हैं, मित्र ही क्यों, आपके त्याग और उपकार को देखते हुए आपको सच्चा बंधु ही कहना चाहिए, ऐसे आत्मीय व्यक्ति का इस प्रकार चले जाना हमारे लिए लज्जा और अपमान का कारण बनेगा, इसलिए मैं आपको आज किसी प्रकार भी नहीं जाने दूंगी। सूखी हंसी हंसता हुआ सुरेश बोला, महीम देख रहे हो अपनी पत्नी का बचपना, तुम लोगों से मिलने आया था, मिल लिया, अब इस जंगल में मुझे तुम और अधिक दिन तक क्यों रोक कर रखना चाहते हो, तुम्हें इससे क्या लाभ है, जो मैं बेकार यहां कष्ट भोगता रहूं? शांत स्वर में महीम बोला, तुम शायद नाराज होकर जा रहे हो, ये इन्हें अच्छा नहीं लगा। तीखी आवाज में अचला बोली, तुम्हें शायद इस बात की कोई चिंता नहीं होगी। सुरेश परेशान हो उठा और विषय बदलने की इच्छा से प्रसन्नता का प्रदर्शन करता हुआ और हंसता हुआ बोला, भाई मुझ पर नाराज होने का झूठा आरोप क्यों लगाते हो? आप लोगों ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं नाराज होकर चलता बनूं? यदि आप लोगों को मेरे रुकने से प्रसन्नता मिलती है तो मैं रुक जाता हूं। फिर अचला की ओर देखता हुआ बोला, भाभी मेरे कपड़े समेटने की जरूरत नहीं, निकाल कर रख दीजिए। फिर वो महीम से बोला, चलो चलो आज तुम्हारे ताल में नहा आते हैं, घर आकर कुनेन की गोली खा लूंगा, चलो। कहता हुआ महीम कपड़े लेने के लिए कमरे में चला गया। जिस प्रकार नया जूता पहनने के शौकीन जूते की काट पर भी हंसते रहते हैं, ठीक उसी तरह सुरेश ने भीतर से दुखी होने पर भी दिन हंसी खुशी में बिता दिया। किंतु सुख से रात काटना उसके लिए संभव नहीं हुआ। पति की अटल गंभीरता के सामने अपने ओछे व्यवहार के लिए तड़पती अचला सिर पटक कर मरने की सोचने लगी। अब वो बुद्धि के स्तर पर महीम को कुछ समझने लगी थी। उसे साफ साफ दिखाई दिया कि बुद्धिमान और मितभाषी महीम के सामने उसकी उछल कूद का सारा अभिनय व्यर्थ ही सिद्ध हुआ है। इसलिए व्यथा बढ़ने के साथ उसकी लज्जा की मात्रा भी बढ़ने लगी। आज पूरा दिन महीम घर में ही रहा। सबने एक साथ मिलकर चाय नाश्ता, दोपहर और रात्रि का भोजन खाया। रात भर बत्ती जलाकर महीम को पड़ता देखकर अचला दुखी स्वर में बोली, उजाले में आंख नहीं लग रही, खुद नहीं सोना तो दूसरों को तो आराम करने दो, क्या तुम इतनी मनुष्यता भी नहीं दिखा सकते? अचला की तीखी आवाज से तिलमिलाते हुए महीम ने तत्काल बत्ती नीची करने के बाद कहा, गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। इसके तुरंत बाद किताब बंद करके और बत्ती बुझाकर वो सो गया। अपनी प्रार्थना के तत्काल स्वीकार किए जाने के लिए अचला ने धन्यवाद जैसे किसी शब्द के बोलने की कोई औपचारिकता नहीं दिखाई। फिर भी वो चैन से सो नहीं सकी। वास्तव में रात्रि का अंधकार समय बीतने के साथ घनीभूत होकर उसे व्याकुल करने लगा। जब बहुत देर तक उसके लिए अपने ऊपर संयम रखना संभव ना हुआ तो वो बड़बड़ाती हुई बोली, गलती चाहे जाने में ही की गई हो या अनजाने में, उसका दंड तो भुगतना ही पड़ता है। महीम का उत्तर था, अनुभवी लोगों का निष्कर्ष यही है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वो फिर बोली, जो गलती हम दोनों से हुई है और जिसका दुष्परिणाम अभी से हमारे सामने है, क्या तुम उसके अंत की कल्पना कर सकते हो? महीम का संक्षिप्त उत्तर था, नहीं, मेरे लिए ये जानना संभव नहीं, किंतु एक बात मेरी समझ में आती है, अपराध करने वालों में भले ही एक स्त्री हो और दूसरा पुरुष हो, फिर भी दंड पुरुष को ही मिलना चाहिए। अविचलित महीम ने कहा, गंभीरता से विचार करने पर तुम्हें दोनों के समान रूप से दंड भागी होने का पता चल जाएगा, किंतु ये बताओ कि तुम किसके दंड भोगने की बात कर रही हो, मेरी या सुरेश की? अंधेरे में भी अचला की तड़पन को समझने में महीम को कोई कठिनाई नहीं हुई। कुछ क्षणों के लिए चुप हुई अचला बोली, मुझे पता था एक दिन तुमने मुझे अपमानित करना है, और एक बार शुरू हुए इस विवाद का किस स्थिति पर जाकर अंत होगा ये भी तय नहीं, किंतु फिर भी तुम्हारे साथ लड़ते झगड़ते ना रहना मेरे बस का है, और ना ही तुम्हारी विवाहिता होने के कारण लड़ते झगड़ते तुम्हारे गृहस्थ की गाड़ी खींचते जाना मुझे पसंद है। इसीलिए एक दो दिनों में ही मैंने अपने बाप के घर चले जाने का फैसला कर लिया है। महीम बोला, तुम्हें अचानक आया देखकर तुम्हारे पिता को कुछ अजीब सा अवश्य लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वास्तव में उन्हें इस परिणति की पहले से ही आशंका थी, इसीलिए उन्होंने मुझे सावधान करने की कोशिश भी की थी और परिणाम की चिंता करने की चेतावनी भी दी थी। ये भी कहा था कि कलकत्ता की बात अलग है, सभी इष्ट मित्रों और बंधु बांधवों के साथ दीर्घकाल के अभ्यस्त परिवेश से कटकर गवई गांव में अकेली स्त्री का अधिक समय तक रह सकना संभव नहीं, इसलिए वे कुछ और भले ही सोचे किंतु मेरे लौटने को अकल्पनीय नहीं समझेंगे। महीम ने पूछा, तुमने अपने पिता की चेतावनी को अनसुना क्यों कर दिया? घायल सांप की तरह लंबे गर्म सांस छोड़ती हुई अचला बोली,
मैं समझती थी कि तुम बिना सोचे समझे कुछ नहीं करोगे। क्या तुम्हारी ये धारणा अब खंडित हो गई है?
हाँ, इसीलिए साझा व्यापार में घाटा देखकर समझौता तोड़ देना चाहती हो?
हाँ।
कुछ देर में महीम बोला, यदि तुम्हारी ऐसी सोच है तो तुम जाने को स्वतंत्र हो।
हाँ,
एक बात तय कर लो, यदि तुमने विवाह को व्यापार समझ रखा है तो मेरा मत तुमसे कभी नहीं मिल सकता। एक बात और, साझा व्यापार के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। यदि किसी दिन तुम्हें अपना यह कदम गलत लगे तो मुझे लिखने में संकोच ना करना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। आंखों से बहते आंसुओं को पोंछती और चुप रहकर अपने को सामान्य संयंत बनाने की चेष्टा करती हुई अचला बोली,
गलती मालूम हो जाने पर भी उसे दोहराया नहीं जाता, इसलिए तुम्हें इस कल्पित चिंता में अपने को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं।
वर्तमान में ना सोच सकने के कारण ही आने वाले कल को भविष्य कहा जाता है।
अच्छा, भविष्य की चिंता भविष्य के लिए छोड़ दो और मुझे इस समय क्षमा कर दो, मुझे इस विवाद में उलझना अच्छा नहीं लग रहा।
व्यथित स्वर में अचला बोली,
तुम शायद मेरी बात को मजाक समझने की गलती कर रहे हो। मैंने सचमुच ही कल परसों चले जाने का मन बना लिया है।
मैं तुम्हें जाने दूंगा तो जाओगी? उत्तेजित होकर अचला बोली,
क्या तुम मुझ पर जोर जबरदस्ती करोगे? तुम जानते हो कि तुम मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध रोक कर नहीं रख सकोगे।
महीम ने कहा, ठीक है, इस समय रात को तो नहीं जा रही हो, अब सो जाओ, कल की बातें कल करेंगे।
बहुत कह सुन लिया, अब और अधिक की कोई आवश्यकता नहीं,
कहता हुआ महीम करवट बदलकर और आंखें मीच कर सोने की चेष्टा करने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह चाय पीते सुरेश ने अचला को संबोधित करते हुए कहा, रोज की तरह महीम आज भी अपनी खेती बाड़ी को देखने के लिए सुबह सुबह उठते ही चला गया लगता है। गर्दन हिलाती हुई अचला बोली,
दुनिया भले ही इधर की उधर हो जाए किंतु इनके कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं पड़ता।
चाय के प्याले को टेबल पर रखता हुआ सुरेश बोला, मेरे विचार में एक दृष्टि से ये बढ़िया ही है, जब तक मालिक द्वारा भरी चाबी चुक नहीं जाती तब तक गति बनी रहती है। हम जैसे निठल्ले लोगों से ऐसे लोग कहीं अच्छे हैं।
अचला बोली, क्या इस प्रकार के मशीनी जीवन को आप अच्छा समझते हैं?
सुरेश बोला, मैं ऐसा नहीं बन सकता, इसलिए इस जीवन को अच्छा ना कहना अनुचित ही होगा। इसे मैं अपनी दुर्बलता के रूप में स्वीकार करता हूँ और स्थिर बुद्धि की प्रशंसा करता हूँ। वास्तव में अपने मन को शांत रखना एक विशेषता है। खैर, छोड़ो इस बहस को, आज मुझे छुट्टी मिल जाए तो घर की राह पकड़ूं।
ठीक है, आज आप जा सकते हैं, मैं भी कल जा रही हूं। हैरान होते हुए सुरेश ने पूछा, कल कहां जा रही हो?
कलकत्ता। अचानक जाने का कार्यक्रम कैसे? क्या कोई विशेष सूचना मिली है?
पिताजी अस्वस्थ हैं, उन्हें देखने का मन कर रहा है।
बेचैनी महसूस करता हुआ सुरेश बोला,
बीमार पिता की खोज खबर लेने लड़की के जाने में कोई अस्वाभाविकता नहीं, किंतु कहीं मेरे कारण आपस में हुए कलह से?
अचला ने सुरेश की इस आशंका का कोई उत्तर नहीं दिया। सामने से आते यदु को देखकर और उसे अपने पास बुलाकर सुरेश ने उससे पूछा, अरे क्या तुम्हारे मालिक खेत से लौटकर आ गए हैं?
यदु बोला, वे आज कहीं गए ही नहीं, वे अपने पढ़ने वाले कमरे में सो रहे हैं।
जल्दी से उठी और दरवाजे से झांकती हुई अचला ने महीम को कुर्सी पर पीठ टिकाकर और टेबल पर टांगे फैलाकर नींद लेते देखा। रात की अधूरी नींद को इस प्रकार पूरा करना लोगों की एक सामान्य आदत है, किंतु महीम का अपने काम धंधे की उपेक्षा करके असमय इस प्रकार से सोते रहना सचमुच एक हैरानी का विषय था। दबे पांव कमरे में घुसकर अचला ने देखा कि सामने खुली खिड़की से आता प्रकाश महीम के चेहरे पर पड़ रहा था। आज उसने पहली बार पति के शांत दिखते चेहरे पर अशांति की धुंधली छाया को घिरा देखा। एक वर्ष पहले तक बेदाग माथे पर कितनी ही चिंता रेखाओं ने घेरा डाल दिया है, सारा चेहरा किसी गुप्त व्यथा से बुरी तरह आक्रांत हो गया है। चुपके से आई और चुपके से बाहर जाती अचला के अचानक लगे पैर से गिरे पीकदान की आवाज से महीम की नींद खुल गई। अपने को लज्जित अनुभव करती हुई अचला ने चिंतित स्वर में पूछा,
इस समय सो रहे हो? तबीयत तो ठीक है?
आंखें मसलता हुआ महीम उठकर बैठ गया और बोला,
संभव है कि ताप चढ़ गया हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ और ना पूछकर अचला बाहर चली गई। खाने पीने से निबट कर जाने की तैयारी में लगे सुरेश के पास बैठा महीम उससे बातचीत कर रहा था। दरवाजे के पास आकर खड़ी अचला ने सुरेश से कहा, वैसे कल मैं भी आ रही हूं, फिर भी यदि समय मिले तो पिताजी की खोज खबर ले लीजिएगा। आश्चर्य प्रकट करते हुए सुरेश ने महीम की ओर उन्मुख होकर पूछा, क्या तुम भाभी को कल कलकत्ता भेज रहे हो? अचला के इस व्यवहार से महीम बेहद दुखी और परेशान हो उठा। फिर भी हंसने की चेष्टा करता हुआ बोला, भाई गांव वालों को शहरियों जैसा नाटक करना नहीं आता, इसलिए कहता हूं कि कल ही क्यों, आज तुम्हारे साथ ही क्यों नहीं चली जाती। सुनकर सुरेश का चेहरा लज्जा से काला पड़ गया, किंतु उसे उबारती हुई अचला बोली, सुरेश बाबू हम शहरियों का लज्जा से कोई परिचय नहीं। मैं पूछती हूं कि यदि बीमार माता पिता की खोज खबर लेने के लिए लड़की के जाने की इस गांव की रीत नहीं, तो इसे शहर का नाटक समझे जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। अच्छा आप और एक दिन के लिए मेरे लिए रुक जाइए, कल हम दोनों एक साथ निकलेंगे। अचला की इस हिम्मत बेवकूफी और बेशर्मी से सुरेश के चेहरे पर कालिक पुत गई और वो सिर झुकाकर बोला, नहीं भाभी मैं और अधिक नहीं रुक सकता, तुम्हें जब आना हो आती रहना, मैं आज ही जा रहा हूं। कहता हुआ वो जल्दी से सूटकेस उठाकर खड़ा हो गया। सुरेश की उत्तेजना ने एक बार तो अचला को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। फिर भी वो अपने को संभालती हुई व्याकुलता से भरे स्वर में बोली, सुरेश बाबू ठीक है चले जाना, किंतु अभी गाड़ी पकड़ने के लिए काफी समय पड़ा है, एक दुखिया की दास्तान सुनने के लिए दो पल रुक जाइए। अचला के रुआसे स्वर और शब्दों ने दोनों पुरुषों को झकझोर दिया। किसी भी मर्यादा का ध्यान ना करती हुई अचला बोली, सुरेश बाबू ये ठीक है कि मैं आपके किसी काम नहीं आ सकी, फिर भी मैं आपको अपने बुरे दिनों का संगी साथी मानती हूं। मेरी ओर से आप मेरे पिताजी को कह देना कि इन्होंने मुझे यहां जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा है, मुझे कहीं भी आने जाने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, मुझे लगता है कि यहां मेरा दम घुट जाएगा। सुरेश बाबू मुझे यहां से मुक्ति पाने में आप मेरी सहायता कीजिए, जिस व्यक्ति से मुझे प्रेम नहीं उसकी गृहस्थी की गाड़ी को खींचने के लिए मुझे विवश मत कीजिए। बेचैन और परेशान हुआ महीम चुपचाप बैठा रहा। उठ खड़ा हुआ सुरेश आंखें लाल करके बोला, महीम मैं तुम्हें इस ब्राह्मण महिला पर यह बल प्रयोग की छूट नहीं दे सकता। हक्का बक्का हुआ महीम अचला को संबोधित करते हुए बोला, क्या तुम होश में हो, जानती हो क्या कह रही हो और तुम्हारे इस कथन का क्या परिणाम निकल सकता है, एक बार सोचो तो सही। फिर सुरेश की ओर उन्मुख होकर वो बोला, तुम जानते हो कि किसी पर किसी प्रकार का बल प्रयोग करना मेरे स्वभाव में नहीं। खैर छोड़ो अचला की बात रख लो, एक दिन के लिए रुक जाओ, कल मैं तुम दोनों को खुद गाड़ी में बिठा आऊंगा, इससे गांव में किसी को कुछ कहने का अवसर नहीं मिलेगा। अच्छा अभी काम से बाहर जा रहा हूं, तुम भी कपड़े लत्ते उतार कर हल्के हो जाओ, मैं घंटे भर में लौट कर आता हूं। कहता हुआ महीम धीरे से कमरे से बाहर चला गया। अचला चौखट को थामे और सिर झुकाए बैठी रही। कुछ देर तक सिर झुकाकर चुप रहने के बाद अचानक हंसता हुआ सुरेश बोला, अचला क्या बढ़िया नाटक किया तुमने, इसे कहते हैं त्रिया चरित्र, मेरी भूमिका भी खूब जमी है, तुमने मियां की जूती मियां के सिर पर मारकर कमाल कर दिखाया है, फिर भी मेरे मित्र की आंखें नहीं खुली, यही तो कला कौशल है। मैं दावे के साथ कहता हूं अचला, बेचारा महीम अकेले में अपने आप पर हंसने और दिल खोलकर रोने के लिए काम का बहाना बनाकर यहां से खिसक गया है। अच्छा जरा दर्पण तो दिखाना, अपने चेहरे को देखूं कैसा दिखता है। इतना कहते हुए सुरेश ने जैसे ही अचला पर दृष्टि डाली, वैसे ही उसके उदास मलिन चेहरे को देखकर वो व्याकुल हो उठा। अचला बिना कुछ बोले गहरी सांस लेकर एक और चल दी।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।